पृष्ठ संख्या एक, हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ। पृष्ठ संख्या दो, सादा। पृष्ठ संख्या तीन, हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ, निर्मला जैन, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पटना, इलाहाबाद, कोलकाता। पृष्ठ संख्या चार, हिंदी आलोचना की 20वीं सदी का संशोधित, परिवर्धित और अद्यतन संस्करण। पृष्ठ संख्या पाँच, भूमिका। हिंदी आलोचना के विकास को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए आलोचनाधर्मी विविध प्रयासों के बीच ठेठ आलोचना का स्पष्ट बोध जरूरी है। अनुसंधान, सिद्धांत निरूपण, पांडित्यपूर्ण अध्ययन, साहित्य इतिहास आदि आलोचना के लिए उपयोगी हो सकते हैं। खुद आलोचना नहीं हो सकते। आलोचना के इस वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत पहले कर चुके थे। वह सही अर्थ में हिंदी के पहले इतिहासकार थे। अपने इतिहास में कवियों के मूल्यांकन के संदर्भ में उन्होंने अनेक आलोचनात्मक सूत्र प्रस्तुत किए। ये सूत्र आज भी आलोचना कर्मियों के लिए प्रेरणादायक हैं। स्वयं आचार्य शुक्ल के मन में इस विषय में किसी प्रकार के भ्रम की गुंजाइश नहीं थी। कालक्रम में भारतेंदु का नाटक शीर्षक शास्त्रीय निबंध पहले प्रकाशित हो चुका था, पर शुक्ल जी ने हिंदी में आलोचना के सूत्रपात का श्रेय बालकृष्ण भट्ट और चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन को ही दिया, क्योंकि समालोच्य पुस्तक के विषयों का अच्छी तरह विवेचन करके गुणदोष के विस्तृत निरूपण की चाल उन्हीं ने चलाई। शुक्ल जी के उपर्युक्त कथन से उनकी आलोचना संबंधी अवधारणा ही स्पष्ट नहीं हो जाती, समालोचना का वास्तविक स्वरूप भी उद्घाटित होता है। शुक्ल जी ने यह भी कहा कि समालोचना काव्य सिद्धांत निरूपण से स्वतंत्र एक विषय ही हो गया। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता संबंधी अनुसंधान परक निबंधों और शिव सिंह सरोज तथा मिश्र बंधु विनोद जैसे इतिहास परक ग्रंथों का पृष्ठ संख्या छः उल्लेख भी उन्होंने आलोचना के अंतर्गत नहीं किया। आलोचना की ऐसी सुस्पष्ट अवधारणा और व्याख्या के बावजूद यदि आज हिंदी आलोचना के इतिहास के अंतर्गत अनुसंधान, इतिहास, काव्य सिद्धांत, अलंकार शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र आदि विषयों से संबंधित ग्रंथों और ग्रंथकारों का बखान किया जाता है तो यह घनघोर घपला ही कहा जाएगा। ऐसे सर्वग्रासी प्रयासों से हिंदी आलोचना की समृद्धि का भ्रम भले ही विस्तार पाता हो, वास्तविक आलोचना के विकास की पहचान धुंधली ही होती है। कहना ना होगा कि आलोचना का कोई इतिहास इस कुहासे को साफ करके ही अपनी सार्थकता का दावा कर सकता है। आलोचना का सही संदर्भ और उसकी सार्थकता की सच्ची कसौटी रचना ही हो सकती है और होती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि समकालीन रचनात्मक साहित्य की समीक्षा सार्थक आलोचना की पहली जिम्मेदारी है। इस दृष्टि से आलोचना के विकास में गंभीरता से की गई पुस्तक समीक्षाओं की भूमिका असंदिग्ध है। ऐसी ही समीक्षाओं के बीच से अक्सर आलोचना का विकास होता है, बशर्ते समीक्षक की वस्तुनिष्ठता और ईमानदारी संदेहातीत हो। उल्लेखनीय है कि हिंदी में आलोचना का सूत्रपात ऐसी ही समीक्षाओं के बीच हुआ। साहित्य की ऐसी महत्वपूर्ण और सार्थक समीक्षाओं के माध्यम से समकालीन साहित्य का मूल्यांकन ही नहीं होता, सामान्य सिद्धांतों और प्रतिमानों का निर्माण भी होता चलता है। इसी क्रम में पूर्ववर्ती रचनाओं और रचनाकारों के मूल्यांकन के प्रयास भी सामने आते हैं। सिद्धांत निरूपण और पूर्वकालीन कृतियों की ये व्याख्याएं समकालीन रचनाओं की समीक्षा के संदर्भ में ही प्रासंगिकता प्राप्त करती हैं। यही प्रासंगिकता आलोचना के विकास क्रम में किसी नए या पुराने कवि की समीक्षा तथा सैद्धांतिक आधार के संग्रह त्याग की कसौटी होती है। हिंदी आलोचना के किसी इतिहास का मुख्य लक्ष्य इसी प्रासंगिकता की प्रतिष्ठा होना चाहिए। इस दृष्टि से देखने पर हिंदी आलोचना का पूरा परिदृश्य ही नए रूप में उद्घाटित होता है। पृष्ठ संख्या 7। आज आवश्यकता हिंदी आलोचना के इतिहास को उसके समुचित परिदृश्य में रखने की है। इस कृति में इसी परिदृश्य का साक्षात्कार करने का प्रयास किया गया है। हमारा प्रयत्न रहा है कि आलोचना के इतिहास के साथ उसकी अद्यतन काल सीमा तक यात्रा की जाए, ब्रैकेट में अंतिम बिंदु तक नहीं। जाहिर है कि समीक्षात्मक लेखों की गहमा गहमी के बीच से जिक्र उन्हीं का उचित जान पड़ा, जिन्हें एक हद तक समय की कसौटी ने भी मान्यता दी। पुस्तक में ग्रहण त्याग, विस्तार संकोच और पारस्परिक अनुपात का निर्वाह निजी विवेक ब्रैकेट में पसंद नहीं के आधार पर ही किया जा सकता है। ऐसा ही करने का प्रयास किया गया है। इस विवेक से सबकी सहमति हो, ना यह संभव है, ना ही इसकी कोई आकांक्षा या दावा है। प्रयास अपनी जगह है, सफलता असफलता का निर्णय तो उनके हाथ है जो इसके संभावित विज्ञ पाठक होंगे। गुरु पूर्णिमा जुलाई 1992, निर्मला जैन, 24-8 माल रोड, दिल्ली 11007। पृष्ठ संख्या 9, दूसरा पाठ। मूल पुस्तक का यह दूसरा संस्करण 20 वर्ष के बाद प्रकाशित हो रहा है। इस बीच आलोचना की दुनिया में कुछ ऐसा घटित ही नहीं हुआ जिसके कारण संशोधन और परिवर्तन करने का दबाव महसूस किया जाता। पिछली सदी के अंत में उत्तर आधुनिक मुहावरों का प्रयोग करते हुए कुछ अतार्किक ढंग का विखंडन और फिकरेबाजी और उसके बाद विमर्शों का दौर दौरा, जिसमें आलोचना दृष्टि में विस्तार की संभावनाएं इसे आरक्षित क्षेत्र की कार्रवाई बनाने के हठाग्रह के कारण बाधित ही हुई। जीवन के मूल्यबोध और विचारधारात्मक चिंतन का जिस हद तक क्षरण हुआ है, उसका प्रभाव साहित्यिक गतिविधि में सबसे अधिक आलोचना कर्म पर पड़ा है। उसके मुख्य दायित्व प्रतिमानों का कमोबेश निर्धारण, पूर्ववर्ती रचनाओं का पुनः पाठ, नई कृतियों की विवेक सम्मत व्याख्या और अंततः उनका मूल्यांकन गौण हो चले हैं। बचा है प्रायोजित विवरणधर्मी प्रशंसात्मक समीक्षाओं का अंबार। ऐसा करना या फिर आलोचना कर्म से विरत हो जाना गंभीर आलोचक की विवशता हो गई है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ आलोचना का आग्रह तो बहुत है पर उसे सहने की ताब नहीं के बराबर। अगर आलोचना अनुकूल नहीं है तो वह बदनियति या नासमझी से प्रेरित मानी जाएगी, यानी आलोचना के राजमार्ग पर वही चले जिसने बचाव के रास्ते पहले खोज रखे हों। वरना करिए लोकार्पण विमोचन, पाइए पुष्प गुच्छ, दीजिए आशीर्वाद, पाने वाला प्रसन्न और देने वाला निरापद, और लिखने छपने का व्यापार यूं ही फलता फूलता रहे घाल मेली ब्रांड धर्मी रचनाओं से। पृष्ठ संख्या 10। ऐसे माहौल में आलोचना अकालग्रस्त होने के लिए अभिशप्त है, पर दूर दूर तक फैले इस रेगिस्तान में हरियाली के जो कुछ द्यूप नजर आ रहे हैं, उन्हें चिन्हते और उनकी उपस्थिति दर्ज करते रहना ही उतना ही जरूरी है, क्योंकि भविष्य तो आखिर इन्हीं में निहित है। इस संस्करण में ऐसे ही बिंदुओं को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। इनकी सराहना में पाठकों की साझेदारी की अपेक्षा है। रक्षाबंधन, 2 अगस्त 2012, निर्मला जैन।